आगम की जो दोष है वो शीघ्र हट सका है, और जो ऐसे के मन बुद्धि में इनके मन जो जमे हुए जो दोष है उनका निकलना कुछ करीब आगम जो दोष, जैसे किसी का किसी के साथ में कुसंग हुआ संग के कारण से उसमें दोष आ गया तो वो जल्दी नित हो, पर जो स्वभाव के में जाकर प्रवेश हो जाए वे किसी दूर होना कठिन हो। शुरू के माँ मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में लगा है, तब इतने समझ करके लगा है कि यह बात अच्छी है, अपने लिए फायदेमंद है, कल्याणकारक है, यही समझ करके के लगे। जैसे वो कुसंग है, इसी प्रकार से जो सत्संग है, यानी अच्छा जो पुरुष है, साधक जो पुरुष है, शास्त्र जो है, उन्हें के संग से ये काम आरंभ हुए, और पूरी के मां और संस्कार हो तो वह जागृत हो जावे, मदद करने लग जावे। इसलिए सत्संग की विशेष महिमा शास्त्रों में गाई है, और बिना सत्संग के बिना ये बात संभव नहीं। इसलिए यह बात कही,
बिना सत्संग न हरी कथा ते बिन मोहन भाग, गए बिनु राम पद हो अनुराग।
बिना सत्पुरुषों के संग के बिना जो मोह है, ज्ञान है, ये दूर नहीं होता। बिना सूर्य के उदय बिना अंधकार का दूर होना जैसे कठिन है, इसी प्रकार से ही सत्संग के बिना ये कठिन है, क्योंकि सत्संग के बिना हरि की कथा नहीं मिलती, और हरि की जो कथा है, हरि उनके गुण प्रभाव तत्व रहस्य की कथा है, हरि के नाम रूप लीला उनकी कथा है, हरि की महिमा है, हरि का जो भी कुछ विषय है वो सत्संग से ही मिले, और उसके बिना अज्ञान दूर नहीं हो सके। हरि जी कथा ही सूर्य है, तो उसके बिना अज्ञान दूर नहीं हो सके, और अज्ञान के दूर हो बिना भगवान के मां दृढ़ अनुराग नहीं हो सके। मामूली तो भलाई, किंतु दृढ़ जो प्रेम है वो संभव नहीं। अज्ञान उसके मां हेतु है, जो संसार के मां प्रेम है, आसक्ति जो है संसार में उसमें अज्ञान ही हेतु है, और प्रेम के बिना भगवान मिलते नहीं। प्रेम से भगवान मिलते हैं, हरि है तो सब जगह मौजूद है ही, प्रेम के बिना मिलते हैं।
हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना,
बालकांड के मां शिवजी महाराज जो है देवताओं की सभा के मां कह रहे हैं कि हरि सब जगह के मां समान भाव से व्यापक हैं, और वे प्रेम से मिलते हैं, इस बात को मैं जानता हूँ। क्योंकि शिवजी क्यों नहीं जाने, शिवजी नहीं जाने तो कौन जानेगा। तो सरू के बीच के वहां सत्संग ही इसको अच्छे काम में लगाने का अर्म साधन है। सत्संग की बातें सुनने पर फिर जितने जो बुरे काम है, बुरे आचरण है, बुरा वातावरण है, ये किसी बुरा मालूम देने लगे, फिर और थोड़ा आगे बढ़ जाए तो फिर ये जो जितनी बुरी बातें हैं उससे इनको ऐसी बुरी मालूम देवे अच्छी नहीं लगे।
तुलसी हरि की भक्ति में ये पांचों ने स्वात दिसे भोग निद्रा हंसी और जगत प्रीत बहु बात। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति में माने मनुष्य जो भगवान की भक्ति में पड़ जाता है उसके हृदय में जो भक्ति के संस्कार किसी जागृत हो जाते हैं तब ये पांच बातें उसको अच्छी नहीं लगती। संसार के विषय भोग और निद्रा, निद्रा माने नींद, निद्रा माने दूसरे की निंदा करना और विषय भोग हंसी मजाक और बहुत बोलना, इन सब के मां नफरत सी हो जाती है, ये बात अच्छी नहीं लगती। अगर तो दूसरे लोगों में ये बुरी आदत देखता है तो उसमें नफरत होती है, उसको अच्छी नहीं लगती। उसके बाद के भी इसके मां अपने द्वारा जो ये काम होता है अच्छा नहीं लगता, दूसरे से आकर प्राप्त हो तो अच्छा नहीं लगे और खुद को अच्छा नहीं लगने के कारण खुद भी उस काम के मां प्रवृत्त हो रही है, विषय भोगों के मां और निद्रा हंसी और मजाक में और संसार के मां प्रेम करने में और बहुत बात बोलने में, इन सब बातों के मां वृत्ति हो जाती है। संसार के जितने बुरे कर्म है जिनको दुराचार कहते हैं वह तो अच्छे लगते ही नहीं, किंतु ये भी अच्छे नहीं लगते। आलस्य और भोग और प्रमाद और पाप और निद्रा, दुर्गुण, दुराचार, ये सभी चीज उसको अच्छी नहीं लगती। तो प्रथम तो दूसरे मनुष्यों में ये देखता है तो वो बात इसके अखड़ती है और अपने में तो अवगुण है किंतु दूसरे के अवगुण उसको अखड़ते हैं कि दूसरों में ये झूठ बोलता है, ये क्रोध करता है, ये इसमें काम का दोष है, लोभ का दोष है, क्रोध है, मोह है, ये झूठ है, कपट है, चोरी है, बेईमानी है, दगाबाजी है, ये दूसरों के भीतर के मां ये दोष देखता है तो उसको खटकता है, दूसरों को अच्छे रूप में देखना चाहता है। अपने में तो ये दोष घटते हैं किंतु दूसरों में जब देखते हैं तो उसको बुरे मालूम देते हैं कि देखो इसमें ये दोष है। उसके बाद में अपने द्वारा जो खराब क्रिया है असंतोष, जैसे झूठ, कपड़े, चोरी, बेईमानी आदि की क्रिया, और उसके बाद में संदेह की राशि क्रिया, संसार के अनुसार हम भोग, तो तामसी जो क्रिया, उससे अपने में जो तामसी क्रिया घटती है उससे मन में वृत्ति होती है। लेकिन भीतर में जो तामसी भाव है, अधिक सोना या प्रमाद या आलस्य, नींद और ये बाहर का जो व्यवहार है तामसी पने का, जिसको हम पाप कर्म कहते हैं, झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, झूठ, जुआ खेलना इत्यादि जो शास्त्र विरुद्ध जो आचरण है उनके भीतर के वहां नफरत होती है, बुरे मालूम देते हैं, ये अच्छे नहीं लगते। उसके बाद के मां उत्तरोत्तर जो है ऐसे बुरे काम उसने बंसी में तो नहीं आते, किंतु मन में उनका संकल्प हो जाता है, बुरी भावना हो जाती है,
क्रोध जो है जैसे बाहर के बीच के वहां क्रोध जाग उठता है तो व्यवहार बिगड़ जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता, किंतु भीतर के वहां क्रोध की वृत्ति जाग उठती है, ऐसे भीतर में काम की वृत्ति जाग उठती है, किंतु विवेक और विचार के द्वारा उसको बाहर में प्रकट नहीं होने देता, ऐसे हृदय में लोभ की वृत्ति भी जाग उठती है, किंतु वो बाहर की वृत्ति में व्यवहार में नहीं जाता, कंट्रोल रखता है, इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल रखता है, तो इंद्रियों के मां वो दोष की भावना तो हो जाती है, किंतु व्यवहार के मां नहीं जाता। आगे जाकर करके इंद्रियों के मां जो दोष की भावना होती है, जो खोटा काम करने की, व्यभिचार करने की, हिंसा करने की इत्यादि जो पाप कर्म है, वो इंद्रियों के भीतर के मां वो दोष कम हो जाता है, इंद्रियों के फिर उसके बाद में इंद्रियों के विषयों के ऊपर जो न्यायुक्त जो विषय है उन पुरुष की दृष्टि चली जाती है, प्रथम तो जो पाप में जो वृत्ति है उसे मन हटता है कि लोभ तो है किंतु न्याय से पैसा मिले तो अपने लेना है, और पाप से मिले तो चाहे लाख रुपए मिलो आपने छूना भी नहीं है, किंतु लोभ होने के कारण से न्याय से प्राप्त हो जावे तो लेना है। स्त्री सहवास में आ सकती है तो अपनी स्त्री के साथ में तो सहवास करना है, किंतु दूसरी नारी से परहेज, वो एक प्रकार से उसको बुरा समझता है, वो दूर रहता है, कोई मन के विपरीत करता है तो भीतर में क्रोध की वृत्ति तो जागृति होती है, पर व्यवहार की भी इसके वहां लाता है तो न्याय युक्त उसे क्रोध को लाता है कि जिससे जो उचित है न्याय है, अनुचित जो क्रोध उसका त्याग कर देता है। उसके बाद के बीच के मां जो अपने स्वार्थ को लेकर करके है तो न्यायुक्त, किंतु अपने स्वार्थ को लेकर के जो क्रोध आता है उसका भी त्याग कर देता है, न्यायुक्त जो काम है उसका भी त्याग कर देता है, न्यायुक्त जो लोभ है उसका भी त्याग कर देता है, वे इंद्रियों तक नहीं पहुंच सकते, मन में फिर भी रहते हैं। आगे जाकर के मन जब शुद्ध हो जाता है तो जागृत अवस्था के बीच की मां ये सब दोष उसके मन में नहीं आते, क्योंकि वहां सतोगुण की प्रधानता हो गई, सतोगुण का साम्राज्य हो जाता है, तो फिर उसके हृदय के मां ये फुरना सो नहीं होती, न पाप की होती है और न भोगों की, न तामसी न राजसी, साधन विषय की जो करुणा है या अपराध के भोग से होने वाली जो करुणा है वही होती है, अपराध भोग के लिए और साधन के लिए और परोपकार के लिए, जैसे संघ की ये करना, दान देना, सब करना, अथवा और भी सात्विक होना, जैसे तीर्थ करना, व्रत करना, उपवास करना, और महासात्विक जैसे भगवान का भजन करना, ध्यान करना, सत्संग करना, मन इंद्रियों पर कंट्रोल करना, ये सब होना होया करती है, राशि और तामसी का पराय त्याग हो जाता है जागृत अवस्था, किंतु स्वप्न अवस्था के वहां फिर होती है, क्योंकि वे संस्कार उसके हृदय में जुड़े हुए हैं, स्वप्न के वहां जब तक
राष्ट्रीय और कामसी वृत्तियां होती है मन में, तो मन एकदम शुद्ध नहीं है। शुद्ध है किंतु एकदम शुद्ध नहीं है। एकदम शुद्ध हो जाए तो स्वप्न के बीच के मन भी उस प्रकार की क्रिया या भाव की जागृति हो ही नहीं सकती। उदाहरण के लिए जैसे अपनी जाति के लोग, बीस भाई है, मारवाड़ गुजरात के ब्राह्मण और बीस है, उनके हृदय के बीच के मांस जो है, अंडा जो है, मदरा इनके संस्कार नहीं थे, तो एक प्रकार से जिनके अब नहीं है उनको ऐसा स्वप्न भी कभी नहीं आता कि मैं अंडा खरीद के लाया या खाया उसका क्या स्वाद है, कभी स्वप्न भी ऐसा नहीं आता क्योंकि संस्कार नहीं है। और प्रश्न गमन का कभी स्वप्न आ जाता है, क्यों? कि उसके भीतर में पाप भावना उस विषय की अभी है, और जब वो पाप भावना एकदम हृदय से उड़ जाती है तो फिर ऐसा भाव स्वप्न में भी नहीं होगा। जागृत में तो होता ही नहीं किंतु स्वप्न में भी नहीं होता। जैसे परिव्रता श्री के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, उत्तम के ऐसे बस मन माही,
उत्तम
स्वप्न एहु आन पूरा स जग नाही, उत्तम जो पतिव्रता है। पतिव्रताओं की अलग अलग श्रेणी है, जो सबसे बढ़कर पतिव्रताओं में जो शिरोमणि है उस स्त्री के हृदय के बीच के मां मेरे पति को छोड़कर के और कोई पुरुष है या भावना उसकी जागृत में तो है ही नहीं, किंतु जागृत की दृढ़ता के कारण में स्वप्न में भी उसके हृदय में ऐसी भावना नहीं होती है। इसी प्रकार से थी जो बहुत अच्छे साधक हैं उनके हृदय के मां ये भावना स्वप्न में भी परस्पर विषय की नहीं होती। उसके हृदय से जब आसक्त उठ जाती है स्वप्न में नहीं होकर के भी, और उसकी बुद्धि के भीतर के बीच के मां किसी अंश में आदर है, तब तक फिर कुछ विलंब होता है परमात्मा की प्राप्ति। जैसे रुपया है तो उसमें लोभ वृत्ति तो नहीं है, न्यास से न अन्यास, किंतु रुपया जो है एक ऐसी चीज है जिसे सब चीज बाजार में से मिल सकती है, यहाँ तक कि स्त्री पुत्र को भी बोल जाओ तो मिल सके, और संसार के सारे पदार्थ अर्थ के अधीन होने के काल से रुपयों से वो चीज मिल सके है। ये यदि अर्थ के प्रति आदर है बुद्धि के अंदर, तो परमात्मा की प्राप्ति में थोड़ा विलंब, आदर होकर के भी वो अन्याय से तो लेता ही नहीं, किंतु न्याय से भी रुपया प्राप्त हुए, रुपयों की वृद्धि हुए, तो उसमें उनका वैराग्य रहता है। वो एक प्रकार से थी अर्थ मात्र के मां सता होते हुए भी उनका उसमें वैराग्य रहता है। ऐसे ही अपनी जो स्त्री है, अपनी जो धर्म पत्नी है, उसमें भी वैराग हो जाता है, उसके साथ में भी सेवा करने की इच्छा नहीं होती, और उसके विशेष आग्रह होने पर ये घटना कभी घट भी जाए तो एक प्रकार से वैराग के नशे में ही वो उसके भीतर में संस्कार नहीं रहती। कभी एक प्रकार से नीति को लेकर के, धर्म को लेकर के, उसके हित को लेकर के समझो कि जैसे आपने क्रोध का जो स्वरूप है वो बुद्धि से व्यवहार में आवे तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं केवल उसके ही कल्याण के लिए भले ही हो तो वो दोष युक्त नहीं है। इसी प्रकार से थी जितने जो आपने अवगुण है काम क्रोध लोह मोह मद मत्सरता अहंकार आदि जो जितने हृदय के में रहने वाले अवगुण उनका रूप बदल जाता है। वे जो बाधक थे वे सब साधक हो जाते हैं। ये सब साधक कैसे हो जाते? साधक पुरुष के लिए ये सब साधन कैसे बन जाते हैं? साधक बनने से तो वह उसके साधक में शामिल होंगे ना। कामना जो है वो भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के भजन जाने के लिए, भगवान में श्रद्धा और प्रेम होने के लिए ये कामना होती है कि भगवान का संयोग हो, फिर वियोग कभी हो ही नहीं, भगवान में परम श्रद्धा हो, भगवान के जिसके वहाँ परम प्रेम हुए, भगवान का भजन ध्यान निरंतर बने। इसी प्रकार लोग भी एकदम सात्विक भाव का बन जाता है। लोग सात्विक भाव का क्या परमार्थ विषय को लोग यो संग्रह करना। जैसे लोग ही आदमी रुपया इकट्ठा करे उसके लिए असली धन असली रुपया यही है कि जिस धन से भगवान मिले, भगवान के बीच के माँ प्रेम बढ़ाणो, भगवान के माँ अपनता बढ़ानी कि भगवान मेरा, भगवान की प्राप्ति में जो सहायक है उन गुणों की वृद्धि करनी, उनके विषय में लोभ हो, क्षमा दया शांति समता संतोष सरलता ज्ञान वैराग ये सब जो है सात्विक गुण इनको बढ़ाना और सात्विक कर्मों की वृद्धि करनी जिनको फल भगवान की प्राप्ति है, जिनकी पूंजी से भगवान मिले वो पूंजी बढ़ानी ये लोभ। इसी प्रकार से क्रोध, क्रोध भी एक प्रकार से परिवर्तन हो जाता है, सात्विक भाव में परिवर्तन हो जाता है। जो बाधक है वो भी हमारे साधक बन जाता है, साधन के वहां मददगार हो जाता है। ऐसे कि हमारे भीतर में जो अवगुण है उस अवगुणों को नष्ट करने के लिए उनके ऊपर टूट पड़ता है। हमारी जो बुरी आदत है चली आई है उसमें कुछ तो सुधार उधार कुछ बाकी है, उसको मिटाने के लिए एकदम टूट पड़ता है। बुरी आदत यानी बुरे जो भाव हमारे भीतर में जो थोड़ा बहुत जो अहंकार है, कभी अहंकार की बात निकाल दी तो वो उस पर संयम करता है कि आज तुम्हारे इस अहंकार की बात निकलगी, आज भोजन नहीं करना, उस पर दंड विधान कर देता है। आज तुम्हारा ये कसूर हुआ तो ये तुम्हारे को दंड दिया जाता है। जो दंड विधान करने वाली जो वृत्ति है वह भी तो एक प्रकार से क्रोध की वृत्ति है। तो अपने में जो क्रोध की जो वृत्ति है उसका प्रयोग करता है, अपने जो इंद्रियों के द्वारा कोई राशि विहार हो जावे या मन के भीतर के बीच में कोई राशि भाव आ जावे, कोई स्वार्थ की भावना आ जावे या कोई आसक्ति की भावना आ जावे तो उस पर टूट पड़ता है, एकदम उसको विनाश कर डालता है। तो वह क्रोध हमारे लिए सहायक हो जाता है। और मोह, मोह भी सात्विक होता है। मोह का सु वास्तव में तामसी है किंतु वो भी जब बदल जाता है तो एक प्रकार से सहायक हो जाता है। वेदांत के सिद्धांत के अनुसार मैं और मेरापन जो है ये अज्ञान का ही कार्य है। ये के भीतर के बीच में जो हंता ममता है ये अज्ञान का ही कार्य है, किंतु उस अहंता ममता का रूप बदल जाता है। मैं ईश्वर का सेवक हूं, ईश्वर मेरे स्वामी हैं, मेरा एक भगवान ही है और कोई नहीं है। मेरे भगवान और मैं भगवान का, मैं जो कुछ करता हूं भगवान के हुक्म से भगवान के लिए करता हूं। और ज्ञान के सिद्धांत में जहां एक तुलसी समझो कि सतोगुण से भी परे की जो स्थिति है, वहां ये ज्ञान के सिद्धांत में बताया कि नाने गुणे का कर्तारण यदा दृष्टा अनुपस्थिति और गुणे भेष परम वीति मद भाव शोधि गच्छति। उस काल में गुणों से अन्य किसी कर्ता को नहीं देखता है, माने जिस काल के बीच के वहां दृष्टा साक्षी वा पुरुष गुणी गुणों में बढ़ते हैं और गुणों से अन्य और कोई कर्ता नहीं है, आत्मा कर्ता नहीं है और आत्मा गुणों से अत्यंत परे है। इस प्रकार का जब भाव दृढ़ हो जाता है, समुद्र विच्छेद हो जाता है शरीर से, तो भगवान कहते हैं वे मेरे भाव को यानी मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो मोह के कारण से यानी अज्ञान के कारण से थी, ये जो आपने वृत्ति होती है ये भी सहायक हो जाती है। और मच्छर का जो दोष है, ईर्ष्या जिसको हम कहते हैं, इसका भी एकदम रूप बदल जाता है। ये ईर्ष्या सात्विक हो जाती है। सात्विक कैसे, तो दूसरे के साधन को तेज देख करके ईर्ष्या करता है कि तेरा क्यों नहीं तेज हुए, मेरी मनुष्य तुम भी मनुष्य। जैसे विष्णुदास ब्राह्मण के साथ में राजा चोर ने होड़ लगाई कि तेरी यदि इसमें अधिक भक्ति होगी, अधिक प्रेम होगा तो भगवान तेरे को मिलेंगे और मेरी होगा तो मेरे को मिलेंगे। दोनों उड़ा उठ काम के बीच में लग गए एक दूसरे के साथ के वहां ईर्ष्या है किंतु कल्याण करने वाली। तो दूसरे के साधन को देख करके अपना जो कमजोर साधन है उसको हम खूब जोश के साथ तेजी के साथ उस साधन को जाने, तो वो हमारा जो ईर्ष्या का अंश है वो भी कल्याण करने वाला है। इसी तरह से मद जो है, गर्व जो घमंड है, इसका भी ऐसा रूप बदल जाता है। मन के भीतर के मां ये रहता है कि ये साधन अमुक आदमी ने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं,